जो टॉपिक हमने बताया वो फिनोमेना, इससे पहले जो सीनियर सेकेंडरी में हमने ऐसे पीसीपी में लेकर आए थे वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद वेव फेनोमेना पढ़ना, मतलब इन दोनों में थोड़ा लिंकेज है। हमने ही वो बेसिक चीज़ें पढ़ ली कि एक पीरियोडिक मोशन होता क्या है। पीरियोडिक मोशन के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो एक पार्टिकल के हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसमें उसके इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उसके वेलोसिटी, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे जहाँ एक पार्टिकल नहीं होके बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, तो जो फॉर्म होता है उसको हम वेव कहते हैं नॉर्मली। तो पहले जनरल जो हमारी सराउंडिंग में होता है उसको हम देखें, जब हम पॉन्ड में पानी में एक कंकर मार देते हैं तो हम देखते हैं कि पानी वेव की तरह मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आगे मूव करती है, तो हम उसको कहते हैं वेव। तो उसके ऊपर अगर आप एक छोटा सा स्ट्रॉ या कुछ डाल देंगे तो देखेंगे कि वो स्ट्रॉ आगे नहीं जाती है, वो उसी जगह रहती है। हमें लगता है कि हमने पत्थर गिराया और वहाँ की पानी आगे चली गई ऐसे वेव बन के, पर अगर उसके ऊपर एक स्ट्रॉ डाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रॉ आगे नहीं जाएगी, मतलब वहाँ की पानी आगे नहीं जा रही है। तो वहाँ क्या होता है, कुछ तो आगे बढ़ रहा होता है, हमें दिखता है कि कुछ आगे बढ़ रहा है। जो चीज़ आगे बढ़ रहा है हम उसे कहते हैं वेव। तो उसमें मास पार्टिकल जो है, या फिर वहाँ पानी की जब हम बात कर रहे हैं, पानी की जो पार्टिकल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर पार्टिकल, वो मूव नहीं करते हैं। उसमें क्या मूव करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसे हम कहते हैं जो मूव करता है उसको वेव कहते हैं। वेव प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव, सब कुछ उसी को लेके है। तो वेव के बारे में जब हम आज डिस्कस करेंगे, आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेव के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या फिर स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनको हम ऐसे कैटेगराइज किस बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और बहुत सारे रिलेटेड फेनोमेना उसके आएंगे, जैसे कि बीट्स एंड सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो वेव फेनोमेना के साथ रिलेटेड है। तो वेव हमारी लाइफ के साथ कैसे एसोसिएटेड है, ये वेव फेनोमेना जो हम सुनते हैं वो साउंड वेव के वजह से, साउंड वेव प्रोपगेट होता है, एक जगह क्रिएट होता है, कुछ आप जब बीट करते हैं वहाँ साउंड क्रिएट होता है, फिर वो वेव के तरह हमारे कानों में पहुंचता है, तब जाके हम सुनते हैं। तो हमारा सुनना साउंड वेव के वजह से है, वेव फेनोमेना उसमें काम करता है। हम जो देखते हैं, अगर लाइट नहीं होती है हम देख नहीं पाते हैं, तो लाइट भी एक वेव ही है, वेव फॉर्म में फ्लो क्या आता है, एंड ड्यू टू दैट वी आर एबल टू, वी कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं। और दूसरी आजकल, मतलब तीसरी है, जो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो है रेडियो वेव। टीवी देख रहे हो, या अभी जो प्रोग्राम हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या मोबाइल कम्युनिकेशन, वो सब कुछ रेडियो वेव के थ्रू ही होता है। तो ये भी वेव फेनोमेना के अंदर ही आता है। तो वेव हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब तक आप बेसिक चीज़ें कि वेव कैसे फ्लो होता है क्या ये, इन सब के बारे में हमें नहीं पता चलेगा, फिर आगे हम चल के इसके जो डिफरेंट फेनोमेना या फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है उसको नहीं समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन को समझने के लिए वेव को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो वेव प्रोपागेशन एक्चुअल में है क्या, हमने अभी कहा कि पानी में कंकर मारते हैं तो कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, पर एक स्ट्रॉ डाल देते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा क्या है जो आगे बढ़ता है, तो वो है एनर्जी। वहाँ जो वाटर की एनर्जी, जो आपने पत्थर मारा, आपने कुछ एनर्जी दिया था, एंड दैट एनर्जी गॉट ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। वाटर के जो डिफरेंट पार्टिकल्स है, वो जहाँ पे कंकर गिरा वहाँ के वाटर पार्टिकल्स को वो एनर्जी मिला, देन दैट एनर्जी इज ट्रांसफर टू द कंजिक्यूटिव पार्टिकल। कंजिक्यूटिव पार्टिकल को वो एनर्जी ट्रांसफ़र होते हुए आगे आगे जाता है, एंड द डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज नोन एज डिरेक्शन ऑफ वेव. तो ये सब वेव में एनर्जी होता है. ये तो पहले सेकेंडरी में भी आपने देखा होगा, एनर्जी वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सबको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो ये भी एक एग्जाम प्रूफ है कि वेव में एनर्जी होता है. और सबसे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जब सुनामी होता है या कहीं फ्लॉड होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी में जो एनर्जी आता है वेव में, टाइडल वेव. सुनामी के केस में बहुत बड़े बड़े वेव आते हैं और पूरा डिस्ट्रक्शन करके चले जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है. तो वो एनर्जी ही आगे प्रोपागेट होके आता है. अगेन अगर हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, टाइप्स ऑफ वेव के बारे में, तो जो आपके पास एक स्प्रिंग, कॉयल स्प्रिंग होता है, स्लिंकी कहा जाता है, उसको आप ले लीजिए और फ्लोर के ऊपर या टेबल के ऊपर एक एंड को उसके फिक्स कर दीजिए और दूसरे एंड को, फ्री एंड को आप हाथ में खींच लीजिए और उसको एक साइडवेज डिस्टरबेंस दे दीजिए. तो आप देखेंगे कि वो वेव फॉर्म में ऑसिलेट हो रहा है. उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि उसमें जिस डायरेक्शन में आपने डिस्टरबेंस दिया है या वेव प्रोपागेट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. अब स्लिंकी को पकड़ के वो फिक्स्ड एंड से हटा दीजिए, स्लिंकी को ऐसे ऊपर से नीचे तक हैंग करके उसको ऊपर नीचे करके डिस्टरबेंस ऊपर नीचे खींचिए, तो तब देखेंगे एक किंक सा या डिस्टरबेंस वेव जैसा उसमें हो रहा है. उसमें देखेंगे एक पोर्शन बिल्कुल कंप्रेस आपको दिखेगा और एक पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेस्ड दिखेगा. तो ये भी एक टाइप का वेव है. और ये जो कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग आपको दिख रहा है, इलोंगेशन या स्ट्रेचिंग दिख रहा है, वो अल्टरनेटली दिखेगा. एक जगह अगर इलोंगेशन है तो नेक्स्ट आपको कंप्रेशन दिखेगा ऐसे. तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेव का डायरेक्शन है, प्रोपगेशन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में ही पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो ये दो टाइप के वेव के बारे में हमने देखा. अब ट्रांसवर्स वेव की प्रोपगेशन, ट्रांसवर्स वेव की प्रोपगेशन के केस में हमने अभी कहा कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रहा है देन दैट इज ट्रांसवर्स वेव. तो आपके बुक अगर सामने है, पार्ट वन, बुक वन, पेज नंबर 367 में एक फिगर दिया हुआ है, फिगर नंबर 14.2. उसमें आप देखें कि नाइन बॉल्स आर देयर एंड सारे बॉल को हमने स्प्रिंग के थ्रू अटैच किया हुआ है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड सो ऑन. तो अगर पार्टिकल बॉल वन, ये बॉल को हम पार्टिकल के हिसाब से देखेंगे अभी, उसको पहले बॉल वन को अगर आपने थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिया तो आप देखेंगे कि वो बाकी बॉल इनर्सिया की वजह से वो नहीं हिल रहे, सिर्फ बॉल वन ही मूव करेगा. लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो जो डिस्टरबेंस है वो आगे ट्रांसमिट होता जाएगा. तो इस केस में सपोज़ वो पूरा एंड तक ट्रांसमिट होने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हमने टोटल टाइम को 8 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया एंड इस इंटरवल इज टेकन एज T/8, कैपिटल T/8. कैपिटल T इज टेकन एज द टाइम पीरियड, टोटल टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस टू ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. यहाँ पे बॉल वन से बॉल नाइन 8 इंटरवल्स आर देयर और उसको ट्रैवल करने के लिए उसको टोटल T टाइम लग रहा है. तो 1 to 2 ट्रैवल करने के लिए T/8, 2 to 3 T/8 ऐसे ही. तो आफ्टर टाइम एट T=0 जब आपने डिस्टर्बेंस दिया, एट दैट टाइम यू विल मेजर द टाइम एज जीरो, तब से टाइम मेजरमेंट शुरू किया हमने, तो वहाँ पे टाइम जीरो था। उस टाइम पे सारे पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन पे हैं। आफ्टर टी बाय एट अब देखेंगे बॉल वन ऊपर गया है एंड बॉल टू मूवमेंट वहाँ तक डिस्टरबेंस ट्रैवल किया है अभी। अगेन आफ्टर टी बाय एट सेकेंड द टोटल टाइम इज टी बाय फोर। अब देखेंगे बॉल वन नीचे मूव करने शुरू किया है, बॉल टू थोड़ा ऊपर एंड बॉल थ्री मूवमेंट शुरू करेगा, वहाँ तक उस वे प्रोपागेट हुआ है अभी। तो ऐसे अगर आप टोटल टी बाय टी इक्वल टू कैपिटल टी, टोटल टाइम जब इलेप्स हो जाएगा उस टाइम पे सारे जो बॉल्स हैं उनके पास वेव, मतलब एंड में जो बॉल है उस तक वेव ट्रांसमिट हो गया इतने टाइम में। तो अगर उसका हम फिगर बनाएंगे देन इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए वेव। आप देख सकते हैं फिगर में आपके बुक में दिया हुआ है, वो एक वेव का फॉर्म लेकर आता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे आएंगी, जैसे जब टाइम इक्वल टू ज़ीरो दैट मीन्स व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग मेजरमेंट, वहाँ पे देखेंगे कि सारे पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन, मेन पोजीशन मतलब रेस्ट में जिस पोजीशन में थे वहीं पे हैं। एट टी इक्वल टू कैपिटल टी जब पूरा टाइम एलप्स हो गया उस टाइम पे आप देखेंगे पहला पांचवा और नौवा, फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ पार्टिकल्स विल बी एट देयर रेस्पेक्टिव मेन पोजीशन, वो भी उस टाइम पे भी वो मेन पोजीशन पे ही रहेंगे ये तीनों, फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ। पर तीनों मेन पोजीशन पे है लेकिन फर्स्ट और नाइन्थ जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे और जो फिफ्थ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। थर्ड और सेवेंथ पार्टिकल दे आर एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, थर्ड और सेवेंथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। तो इन सबको ज्वाइन कर लेंगे हम तो वो एक ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म लेता है, और जो ऊपर की तरफ जो थर्ड पार्टिकल है वो अपर साइड में है, जो फिफ्थ पार्टिकल है वो डाउन नीचे की साइड में है। तो अपर साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड अपर साइड में उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे की साइड में है उसको हम कहते हैं ट्रॉफ। तो ऐसे ही क्रेस्ट एंड ट्रॉफ फॉर्म होता है ट्रांसवर्स वेव में। और इसमें अगर एक स्ट्रिंग में जब वेव मूव करती है तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग आर ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन अबाउट द मेन पोजिशन, मेन पोजिशन के अप एंड डाउन सारे पार्टिकल्स और ऑसिलेट करते हैं, और सारे पार्टिकल का टाइम पीरियड टी होता है और एम्पलीट्यूड ए सेम होता है, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड सारे पार्टिकल का सेम होता है, पर अलग अलग टाइम पे मतलब सेम टाइम पे सारे पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशन पे आपको मिलेंगे, अलग अलग ऑसिलेटिंग स्टेट में रहेंगे। तो वेव मोशन में क्या होता है, जो दो नियरेस्ट पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो अगर वो सेम फेज में हैं, जो दो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और नियरेस्ट पार्टिकल, वैसे तो जैसे हमने देखा फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ पार्टिकल ऑल आर इन सेम वाइब्रेटिंग स्टेज, लेकिन उसमें भी हमने देखा फर्स्ट और नाइन्थ जो थे वो अपवर्ड डायरेक्शन, फिफ्थ इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मेन पोजीशन पे हैं लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो हम नहीं कह सकते कि तीनों एक ही फेज में हैं। फर्स्ट और नाइन्थ जो हैं वो दोनों मेन पोजीशन पे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में हैं, तो इस केस में ये दोनों हैं जो सेम वाइब्रेटिंग स्टेट में हैं और ये दोनों नियरेस्ट हैं, इन दोनों के बीच में और ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो सेम फेज में हो, तो इस केस में हम कहेंगे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो द डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेव लेंथ एंड बोथ आर इन सेम फेज। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी जैसे हम पहले कहते थे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, देन वेलोसिटी इस केस में भी हम डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस सपोज हो गया लामडा, हमने कहा कि इनिशियल पार्टिकल, जो दो पार्टिकल इक्वल सेम वाइब्रेटिंग स्टेज में हैं, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू लामडा, और वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको लगेगा टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस इज लामडा, टाइम इज टी, सो वेलोसिटी इक्वल टू लामडा डिवाइडेड बाय टी। तो वी इक्वल टू लामडा बाय टी को हम 1 बाय टी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाय टी की जगह पे अगर फ्रीक्वेंसी का हम वैल्यू डालते हैं देन वी इक्वल टू एन लामडा, एन इज फ्रीक्वेंसी। अब के इज नोन एज प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट, और इसको हम कहते हैं द के इक्वल टू 2 पाई बाय लामडा, क्योंकि लामडा डिस्टेंस में फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। जो दो पार्टिकल हैं सेम फेज में, नियरेस्ट पार्टिकल हु आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज लामडा एंड द फेज डिफरेंस, बिकॉज सेम फेज मीन्स 2 पाई फेज के बाद वही सेम फेज फिर से आ जाता है, तो वो डिस्टेंस सेम फेज फेज डिफरेंस इज 2 पाई कहते हैं हम, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय लामडा एंड दैट इज नोन एज प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट, के इक्वल टू 2 पाई बाय लामडा। ये जो नोटेशंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपके आगे चल के प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो इक्वेशन हम लर्न करेंगे उसमें ये सारी की ज़रूरत है। इसलिए इन सब की क्या वैल्यू है, एक वेव प्रोपागेशन में इनकी डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ रह किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझना सबसे ज़रूरी है। और ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, वो फिजिकली क्या है उनका वैल्यू, ऐसे तो मैथमेटिकली हम के ओमेगा ये फॉर्मूला जानते हैं तो पुट करते जाएंगे, लेकिन एक्चुअली उनका क्या डेफिनेशन है वेव में, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट के एंड ओमेगा डिनोट्स द फेज चेंज पर यूनिट टाइम, हम रोटेशनल मोशन में भी ओमेगा पढ़ते थे, वहाँ पर भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ओमेगा कहते थे, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज इज नोन एज ओमेगा। तो यहाँ पे फेज इक्वल टू 2 पाई एंड द टाइम रिक्वायर्ड इज कैपिटल टी, टाइम पीरियड, सो 2 पाई बाय टी इक्वल टू ओमेगा एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इज फ्रिक्वेंसी। तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा बाय के। ये सारे जो रिलेशन है k इक्वल टू 2 पाई बाय लामड़ा, वेलोसिटी इक्वल टू n लामड़ा, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाय k, ये सारे को इंटर रिलेट करके जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं या कॉन्सेप्चुअल आते हैं उसका जवाब आपको देना होता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव के केस में हमने डिस्कस किया। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको कहेंगे, व्हेन द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलॉन्ग द डिरेक्शन ऑफ वेव, डिरेक्शन वेव के डिरेक्शन में ही पार्टिकल के वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन, जहाँ पे पार्टिकल कंप्रेस हो जाता है क्योंकि ये अलॉन्ग द डिरेक्शन ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक जगह पे वो कंप्रेस हो जाएंगे और उसके पास वाले जगह पे वो रेयरिफाइड, मतलब वहाँ पे दूर दूर रहेंगे, एक जगह पार्टिकल्स बिल्कुल बहुत पास पास हो जाएंगे और एक जगह दूर दूर हो जाएंगे। आप ऐसे ही सोच लो, आप अपने सारे फ्रेंड्स हाथ पकड़ के खड़े हो गए और एक डिस्टरबेंस आया और दोनों तरफ से, क्योंकि एक तरफ अगर आप फिक्स्ड हो तो आपको कंप्रेस कर दिया गया तो सारे एक जगह ही कंप्रेस हो जाओगे, लेकिन बीच में ही कुछ बच्चों को हमने कंप्रेस कर दिया, लेकिन जो दो एंड में पार्टिकल हैं वो अपनी जगह छोड़ के नहीं आ सकते, तो क्या होगा, फिर जहाँ पे हमने कंप्रेस कर दिया उसके पास वाले बच्चे थोड़े दूर दूर खड़े हो जाएंगे तो डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। ऐसे ही अल्टरनेटली कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन क्रिएट होता है, ट्रांसवर्स वेव में ट्रॉफ एंड क्रेस्ट क्रिएट हो रहा था, इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन, और इसमें प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं। एंड इसमें अभी हम जैसे स्लिंकी की बात कर रहे थे, स्लिंकी के केस में भी आपने उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब डिस्टरबेंस दिया तो उसमें भी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्रिएट हो रहा था, तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में होता है। जब साउंड वेव ट्रैवल करता है इन गैसियस मीडियम, उसमें भी साउंड वेव इज इट्सेल्फ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, चाहे किसी भी मीडियम में ये हो रहा हो, इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड गैसियस मीडियम में वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्प्रेशन रिफ्रेक्शन कैसे होता है वो आपके यहाँ फिगर में दिया हुआ है, फिगर 14.4 में आप देख सकते हैं। तो दोनों के केस में ट्रांसवर्सो या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दोनों के केस में ये सिंपल हार्मोनिक वेव का जो इक्वेशन है वही अप्लाई होता है। तो पहले भी हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के वेव इक्वेशन इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसको हम अगर फेज एक पॉइंट है ओ से शुरू हुआ वेव एंड यू आर टेकिंग द पोजिशन और डिटरमाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट पी विच इज अहेड ऑफ ओ एंड द डिस्टेंस ओ पी इक्वल टू एक्स, तो इसको अगर पी के पी पॉइंट पे हम इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे देन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि जो पॉइंट पी है वहाँ डिस्टरबेंस बाद में पहुँचेगा, तो उसका फेज डिफरेंस फाई, मतलब उसका फेज जो है वो फाई लैग करेगा, मतलब वो पीछे रहेगा। पहला पॉइंट, क्योंकि पहला वाइब्रेशन, उसका वाइब्रेशन पहले शुरू हुआ है वो थोड़ा आगे रहेगा, और जिसका वाइब्रेशन बाद में शुरू हुआ वो थोड़ा उसका वाइब्रेशनल स्टेट जो है वो पीछे रहेगा। तो इसलिए हम उसका ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ये लिख सकते हैं। ओ पी इक्वल टू एक्स है और के इज द फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस के लिए फेज चेंज होगा के एक्स, फाई इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पे के एक्स का फाई का वैल्यू के एक्स पुट करने के बाद वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है इक्वेशन ऑफ वेव, वेव इक्वेशन है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो सिंपल हैं वो इसी के ऊपर ही आते हैं। वाई इज डिस्प्लेसमेंट, ए इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज योर फेज चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज चेंज, और के इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो इसमें सारे वैल्यू गिवन होगा, कोई एक वैल्यू आपको दिया नहीं होगा और आपको वो कैलकुलेट करना है। तो ये वेव इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको दूसरे फॉर्म में अगर ओमेगा का वैल्यू हम 2π/T एंड के का वैल्यू 2π/λ पुट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए साइन 2π/t माइनस x/λ, ये भी एक वेव इक्वेशन है। तो आपको क्या वैल्यू गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करके आप कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। जो इक्वेशन पुट करने के बाद एक अननोन रह जाएगा, बाकी सारे नोन है, आपको वही इक्वेशन पुट करना है। इसको और एक फॉर्म में भी लिखा जाता है वाई इक्वल टू ए साइन 2π/λ, हमने कॉमन ले लिया तो वी टी माइनस एक्स, वी इज वेलोसिटी, टी इज टाइम, एक्स इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पार्टिकल और वेव जहाँ पे अभी पहुँच गया है। एंड दूसरे, अगर हमने यहाँ पे जितने इक्वेशन कहा उसमें सब में हमने ये देखा, ये एज्यूम किया है कि जो पहला पार्टिकल है वो ज़ीरो फेज से शुरू हुआ है, लेकिन पहले से ही कुछ फेज अगर उसका फाई ज़ीरो है देन ये सारे इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। फाई की के एक्स की जगह पे हम प्लस फाई ज़ीरो फिर ऐड करेंगे, जैसे कि वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई ज़ीरो, ये जो इनिशियल फेज को हम फिर उसमें ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन जब आता है उसको आपको ठीक से पढ़ना है कि इनिशियल फेज अगर गिवन है तो उसको ऐड भी करना है, और क्या क्या गिवन है, k क्या अननोन है उसके हिसाब से वही फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो ये था सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। इसके आगे हम देखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए वेव एंड फेज डिफरेंस एट द सेम पोजिशन ओवर ए टाइम इंटरवल, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इन वन डायमेंशन। तो इसमें हमने देखा कि वेव इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में है, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन टू पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं। तो अगर फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए वेव आपको निकालना है, एक वेव है उसका दो पॉइंट है उसके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए सपोज हमने दो पॉइंट लिया और एक पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा पॉइंट जो एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव कर गया है उतने डिस्टेंस में वो दूसरा पार्टिकल है, तो उसके केस में हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस, इस जगह पे फेज जो है वो है जो साइन के आगे जो चीज़ हम लिखते हैं दैट इज फेज, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये जो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे के एक्स एंड के एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज द फेज। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस के एक्स, देन दैट इज के डेल्टा एक्स और के इक्वल टू टू पाई बाय लामडा, टू पाई बाय लामडा अगर पुट करते हैं देन डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई बाय लामडा इंटू डेल्टा एक्स। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस एंड डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस एंड द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो अगर दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेकेंड पार्टिकल इज एट डिस्टेंस x2, फर्स्ट पार्टिकल इज एट डिस्टेंस x1, देन यू कैन राइट डेल्टा फाई इक्वल टू माइनस ऑफ टू पाई बाय लैम्डा x2 माइनस x1। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दिस इज बिकॉज द सेकेंड पार्टिकल विल बी एट ए वो फेज लैग करेगा और जो फर्स्ट पार्टिकल है वो फेज में आगे रहेगा, तो सेकेंड पार्टिकल माइनस फर्स्ट पार्टिकल हम कर रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव आएगा। तो ये था फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए वेव, दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। लेकिन अगर फेज डिफरेंस एट द सेम पोजिशन ओवर ए टाइम इंटरवल, सपोज आपने t इक्वल टू टू सेकेंड पे जिस पॉइंट पे फेज देखा था t इक्वल टू फोर सेकेंड में उसी पॉइंट पे फेज क्या है और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या रहेगा वो कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सपोज एट टाइम t1 फर्स्ट जब आपने ऑब्जर्व किया उस टाइम पे फेज वॉज टू पाई बाई टी इंटू टी वन माइनस टू पाई बाय लामडा इंटू एक्स था। अब फाई टू इक्वल टू अब टाइम टी टू ओवर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी, आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट द फेज वॉज टू पाई बाय टी इंटू टी टू माइनस टू पाई बाय लामडा इंटू एक्स। तो यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे फाई टू माइनस फाई वन, सो डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन इक्वल टू टू पाई बाय टी इंटू टी टू माइनस टी वन। तो अब टू पाई बाय टी को हम लिख सकते हैं टू पाई इंटू न्यू, न्यू इज फ्रिक्वेंसी इंटू टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन इज योर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो टू पाई इंटू न्यू इंटू डेल्टा टी ये फेज डिफरेंस एट द सेम पोजिशन ओवर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये दो फॉर्मूला कैसे आए, हम अभी ही मैंने कहा था कि जो फेज है जो साइन के आगे लिखा हुआ है दैट इज फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स उससे ही रिलेट होता है। तो ओमेगा टी में एक टाइम है के एक्स में एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के साथ रिलेट होके फेज आ रहा है, इसलिए अगर डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे आप फेज निकाल के फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, टाइम के साथ भी रिलेटेड डेल्टा टी, अलग अलग टाइम पे भी हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वेदर द पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस और सेम पॉइंट पे एक टाइम इंटरवल के साथ आप निकाल रहे हो। तो ये तो हमने फेज ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के वेव इक्वेशन और इन जनरल वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक वेव, उसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में देख लिया। तो हमें बहुत सारे इक्वेशन मिल गए और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि कैसे वेव इक्वेशन को अप्लाई करके आप फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में जो पढ़ा, उससे आप उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसवर्स वेव में कहा कि उसमें ट्रॉफ एंड, पहले तो ये देखना है कि दोनों केस में पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे अलग अलग है। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, एंड इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। अगेन ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रॉफ क्रिएट होता है, जैसे वेव प्रोपगेट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट है पॉजिटिव साइड में उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, जो नेगेटिव साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको कहते हैं ट्रॉफ। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्रिएट होता है। कंप्रेशन मतलब जहाँ पार्टिकल मीन पोजिशन में जितने डिस्टेंस में रहते हैं उससे कम डिस्टेंस में आ जाते हैं, और रेयरफेक्शन मतलब मेन डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस में वो रहते हैं, तो हम उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। तो ये उनके बीच में दूसरा डिफरेंस है। तीसरा ये है कि ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड इन सॉलिड और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, या तो सॉलिड में ट्रांसफ़र होता है या फिर लिक्विड सरफेस में ही ट्रांसमिट होता है ट्रांसवर्स वेव। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसमिट हो सकता है। फोर्थ वन इज जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, अगर आप ट्रांसवर्स वेव के केस में प्लॉट करोगे तो वो एक एक्चुअल वेव का फॉर्म लेता है, पर इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकुलर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ गिवन टाइम में उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आता है साउंड वेव, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के केस में आप दे सकते हैं जैसे आपका लाइट वेव है वो भी ट्रांसवर्स वेव ही है, और जो स्ट्रिंग में वेव ट्रांसमिट होता है दैट इज आल्सो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, और एक हम शुरू में ही बात करे थे मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में ये ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें क्या होता है, एक डिफरेंस है कि मैकेनिकल वेव के लिए एक मीडियम चाहिए, जैसे हमने कहा कि ये सॉलिड में और लिक्विड में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रांसमिट होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकता है, जैसे सन से हमारे तक लाइट आती है तो बीच में हमारे पार्टिकल मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ से भी लाइट ट्रांसमिट होके हमारे तक पहुँचता है, तो उसके लिए मीडियम नेसेसरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मीडियम होगा तो वो ट्रैवल नहीं करेगा, मीडियम में भी करता है और विदाउट मीडियम भी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अनदर थिंग इज दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इस उसमें पार्टिकल्स नहीं होते, जो वाइब्रेट करता है उसमें वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाइब्रेट करते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे जितने रेडियो वेव या फिर लाइट वेव वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए आजकल स्काई वेव स्पेस वेव प्रोपगेशन हो रहा है। जो मटेरियल मीडियम में पहले ट्रांसमिट होता था वो उसमें हमें डिस्टरबेंस भी सुनाई देते थे, जैसे हमारे चारों तरफ कुछ यहाँ पे एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में कुछ डिस्टरबेंस होता था। पहले होता था कि टीवी चलाए होते थे और थंडरस्टॉर्म या कुछ होता था तो वो पिक्चर ऐसे हो जाता था, साउंड गड़बड़ हो जाता था। लेकिन जब से हमने हाई लेवल पे वैक्यूम में जब से ट्रैवल किया है तो आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होती, क्योंकि वो रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जब वैक्यूम में ट्रैवल करता है एटमॉस्फेयर से भी ऊपर, वहाँ पे इन सब का इफ़ेक्ट नहीं होता है तो वो डिस्टर्ब इतना नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी हमारे मतलब आज के कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, और उसके बारे में आगे जाके आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ ओनली ऑन बिहेवियर ऑफ वेव्स। तो जो एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, जब मैकेनिकल वेव की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि उनकी वो उस पार्टिकल की मास होनी चाहिए। दूसरा है उन पार्टिकल मीडियम की इलास्टिसिटी होनी चाहिए, कुछ इलास्टिसिटी होनी चाहिए और पार्टिकल्स की मास होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें वेव ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आज हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव एंड इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में डिस्कस किया, लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव और साउंड वेव प्रोपगेशन इन मीडियम ये हम अगले पीसीपी में हम बात करेंगे।